भागवत और भगवान का नाम यह अस्त्र है अज्ञान को काटने के लिए, मारने के लिए। और श्रीवास आदि जो भक्त हैं वे हैं पार्षद, संगो पांगास्त्र पार्षदम। तो ऐसे प्रभु की आराधना कलयुग में सुमेधा लोग करते हैं। कैसे? यज्ञ ही, यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं। कथम भूत यज्ञ ही संकीर्तन प्राय, जिसमें संकीर्तन ही मुख्य है। और भी पूजा आदि करते हैं, मंदिर में आराधना करते हैं, लेकिन ज्यादा तो संकीर्तन ही करते हैं। संकीर्तन से तात्पर्य नाम संकीर्तन और श्रीमद् भागवतम आदि का उच्चारण आदि। यज्ञ संकीर्तन प्राय, ऐसे गौरचंद्र की उपासना भक्त लोग, सुमेधा लोग प्राय संकीर्तन से करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम यह एक अर्थ हुआ। अब जो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी ने अर्थ किया है, और किम वर्ण जो प्रश्न पूछा गया है उसका अगर इमीडिएट अर्थ किया जाए तो यहां पर भगवान कृष्ण अर्थ होगा। ये सारे अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। कृष्ण वर्णम, कलयुग के जो आराध्य हैं उन प्रभु के शरीर का रंग है सांवर कृष्ण। सुनिए, तीनों आराध्य कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री राम, वो सब बातें आ रही। कृष्ण वर्णम, कलयुग के जो आराध्य हैं, जो द्वापर के अंत में अवतार लिए थे और कलयुग में जो आराध्य हुए, उनका ना उनका उनके शरीर का रंग है कृष्ण। लेकिन त्रिशा ऐसा नहीं है कि वो केवल काला है, शरीर से नील उज्जवल मणि का प्रकाश निकलता है, उज्जवल नील मणि जैसा प्रकाश निकलता है, बहुत सुंदर है। हाय काले, लेकिन कितने गोरे उन पर न्योछावर हो जाएंगे। एक कवि ने कहा है कि बावरी वे अखिया जरी जाए जो सांवरो छाड़ी निहारत गोरो। वो कह रहा है, कोई गोपी कह रही है कि अगर भूल करके भी कृष्ण के अलावा दूसरा नाम जीभ से निकल जाए तो जीभ को काट कर हलाहल जहर में बोर दो, और आंख अगर भूल करके भी दूसरा देखे, सांवरे को छोड़ करके गोरा देखे तो इसको जला दो। बावरी में आंखिया जरी जाए जो सांवर और साड़ी निहारत को। भगवान सांवले हैं लेकिन त्रिशा अकृष्णम, उज्ज्वल है, चमक रहे हैं। इतना प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलता है कि वे अकृष्ण कहे जाते। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, वे अपने अंग के साथ हैं, श्री बलराम जी के साथ। इनको अंग कहते हैं। और इसके साथ ही साथ उनके और जो भक्त हैं या ब्रज में जो शक्तियां हैं, इनको उपांग कहते हैं। और अस्त्र और पार्षद तो साथ में लेते ही, जैसे द्वारका में, मथुरा में अस्त्र से सुदर्शन चक्र आदि। बांसुरी को भी अस्त्र कहा गया है, जहां काम नहीं चलता तीरों और कमानों से, वहां विजय होती है नेटवर्क की, वहां मुरली की तानों से। जहां चक्र काम नहीं करता है, धनुष काम नहीं करता है, वहां मुरली काम करती है। और मुरली तो सारे विश्व में सबको परास्त करके कृष्ण के पास ला देती है, इसलिए मुरली को भी एक अस्त्र ही कहा गया है। इस तरह श्री कृष्ण है, ये जुगाराध्य भगवान श्री कृष्ण कलयुग के। इनकी आराधना यज्ञ संकीर्तनों प्राय, इनकी आराधना यज्ञों से करते हैं और संकीर्तन से करते हैं, प्रायः यज्ञों से और प्रायः संकीर्तन से। यह भी अर्थ है, बारंबार कथा द्वारा कीर्तन द्वारा भगवान की आराधना करते हैं कलयुग में। सुमेधा लोग करते हैं, कृष्ण को सब लोग नहीं पहचानते हैं, जो सुमेधा हैं वे कृष्ण को पहचान जाते हैं, तो ये आराधना करते हैं। यही अर्थ भगवान श्री राम के साथ लागू होगा, हु बहु अर्थ यही हो। कृष्ण वर्णम, रंग कृष्ण है, हरा है लेकिन उसको भी कृष्ण कहा जा सकता है, लेकिन कांति जो है वो कृष्ण नहीं है, और वो भी अपने अंग उपांग के साथ हैं, पार्षदों के साथ है, और उनकी आराधना यज्ञों से और संकीर्तन से की जाती है। क्योंकि आगे जो करभाजन जी बोल रहे हैं तो कलयुग में जिस प्रभु की आराधना लोग करते हैं तो इसमें भगवान श्री राम की लीला का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। तिक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्ज बजता जदगादरण। इसलिए हमारे आचार्यों ने तीन अर्थ किया है, कलयुग में तीन ही आराध्य है, श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र और श्री चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कैसे स्तुति करते हैं, स्तुति बता रहे हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठयार्ज वचसा जदगादरण्यं माया मृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं। भगवान के, भगवान श्री राम या श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल कैसे हैं? ध्येयम् ध्यान करने योग्य, बहुत शुभ विषय है, बहुत सुंदर, उसी को मन में सोचना चाहिए सदा, या सदा सबके साथ जुड़ा हुआ है। सदा ध्येयम् ध्येयत्रे हेतवः, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं क्यों ध्येय है, क्यों भगवान के चरण कमल का ही ध्यान करना चाहिए, तो उसका कारण बता रहे हैं। परिभवघ्नम एक विशेषता है, परिभव को घ्न कर देता है, परिभव का नाश कर देता है। श्रीधर स्वामी जी अर्थ लिखते हैं, इंद्रिय कुटुंबाद भी यह परिभव तिरस्कार स्तम हमती इति तथा तत्। इस जगत में मनुष्य की अपने इंद्रियों से और कुटुंब से बहुत भारी पराजय हो रही है, तो परिभव कहते तिरस्कार हो रहा है जीवात्मा का। मनुष्य सबसे ज्यादा जो लताड़ा जा रहा है वो अपने इंद्रियों द्वारा और अपने परिवार द्वारा, यही दोनों फजीहत में डाले हुए हैं इसको। लेकिन भगवान के चरण कमल ऐसे हैं जो इंद्रियों की गुलामी से मुक्त कर देते हैं और परिवार की गुलामी से भी मुक्त कर देते हैं, तो परिभवघ्न परिभव को समाप्त कर देते हैं अर्थात विजय देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात श्रीधर स्वामी जी लिख दिए कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार कहां हो रही है, अपने इंद्रियों से और अपने परिवार के लोगों से। और जगह तो वीर बनता है लेकिन अपना जमलका से हार जलाया आदमी। एक गीत मैं सुना था कि कहीं कोई जीत जाए लेकिन अपने लोगों से तो हार ही जाना पड़ता है। बड़ा राजा विजेता है, चारों तरफ युद्ध करके आता है लेकिन अपनी पत्नी के पास जब आता है तो पगड़ी उतार करके शरण में गिर जाता है। और पत्नी पूछती है इतना दिन कहां से था, इतना दिन कहां बिताया, वो कहता है कि युद्ध में बिता, इधर उधर बिता। नहीं नहीं, तुम्हारा मन किसी न किसी स्त्री में गया था इसलिए देर किया, तुम हमको भूल गया। तो उस समय वो शपथ खाता है अपने इष्ट देव की और अपने माता पिता की और चरण में मुकुट रहकर प्रणाम करता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं केवल युद्ध में लगा हुआ था, ऐसे ऐसे। तो उसके चरण में गिर गिर करके मनाता है और उस समय उसकी पत्नी उसको लात से मारती भी है और उसको भी सह लेते। ये भागवत के तृतीय स्कंध में लिखा हुआ है, भगवान कपिल देव कहते हैं। हारा हुआ है व्यक्ति, हारा हुआ है कुटुंब से, हारा हुआ है और अपने इंद्रिय से हारा हुआ है। आंख के काम को करना पड़ता है, आंख कहती है इधर चलो देखो तो जाना पड़ता है, जीभ कहती है इधर चलो खाओ तो जाना पड़ता है, कान कहीं खींच रहा है, जिह्वा कहीं खींच रही है, शिश्न कहीं खींच रहा है, हाथ कहीं खींच रहा है। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति की 10 इंद्रियां 10 स्त्रियां हो और 10 घर में खींचे उसको, उस तरह से 10 इंद्रियां मनुष्य को 10 ओर खींचती रहती है। बहुत भारी पराजय है, मूर्खता बस आदमी भले समझ ले कि नहीं 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 मैं नहीं हारा हुआ हूँ, मैं इंद्रियों से परास्त नहीं हूँ, मैं परिवार से परास्त नहीं हूँ, लेकिन तो दूसरी बात है नहीं मानना। लेकिन पराजय है, उस पराजय से कैसे मुक्त होंगे, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का वरण करेंगे, वो हरा देगा, वो हमको विजयी करेगा, परिभवग्नम। और इसके साथ ही साथ अभीष्ट दो हम मनोरथ पूरकम, ये चरणारविंद का विशेषण है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल या भगवान श्री राम के चरण कमल अभीष्ट पूरकम, हमारे मन में जो भी सुख की लालसा है वो पूरी हो जाएगी। भगवान का भक्त बनने पर, भगवान की आराधना करने पर उनके चरण कमल हमारे सारे मनोरथ को पूरा कर देते हैं, और कोई नहीं पूरा कर सकता है। जीव के हृदय में जितनी लालसा है उसको कौन पूरा कर सकता है। विद्यापति ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य के मन में जितनी लालसा है सुख की, वह एक विशाल मरुभूमि के समान है, और संसार में जो उस लालसा को पूरा करने के लिए सुख की सप्लाई है वो एक बिंदु के जैसा है। तातल सई कतबार बिंदु सम सुतमित रमणी समाज, ये पुत्र स्त्री मित्र सब मिल करके उस व्यक्ति को सुख देना चाहते हैं, लेकिन सब लोगों के द्वारा जो सुख की सप्लाई हो रही है वो तातल सैकत में मरुभूमि की तप्त बालुका में एक बूंद जैसा है, क्या वो सुख देंगे, और वो भी सब समय रहेंगे नहीं, छूट जाएंगे। वास्तव में मनोरथ पूरा कर सकते हैं श्री कृष्ण, जीव को सदा के लिए तृप्त कर देते हैं, उनको अभीष्ट दोहम कहते, अभीष्ट दोहम। और इसके साथ ही साथ जीव की अविद्या का नाश कर देते हैं। तीर्थास्पदम, गंगा आदि महातीर्थों के जन्म स्थान है भगवान के चरण। गंगा जी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अनंत जीवों का पाप काट रही है अनादि काल से, क्यों, क्योंकि भगवान के चरणों से निकलकर बह रही है। तो समस्त तीर्थों का मूल स्थान है भगवान का चरण कमल। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमल का ध्यान करता है, आश्रय लेता है, तो वह परम पवित्र हो जाता है। तीर्थास्पद, उसके सारे पाप ताप अंध और अघ नष्ट हो जाते हैं। भगवान की शरण में आते ही सब कुछ, सारे पाप अपराध नष्ट हो जाते हैं, ये तीर्थास्पदम का भाव है। शिव विरंचि नूतम, और यहाँ तक कि श्री शंकर जी, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा, ये लोग भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हैं। शिव विरंचि नूतम, इसके द्वारा सिद्ध हुआ महत्तम, भगवान के चरण सबसे पूज्य है, सबसे महान। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि हम क्यों विष्णु के चरण की पूजा करें, क्यों कृष्ण की करें, तो देख लो दुनिया में सबसे बड़े लोग कृष्ण के भक्त, कोई तुलना नहीं है। अब देखिए भगवान के चरण कमल से दोनों का कितना प्रेम है। एक ने भगवान के चरण को धो करके कमंडल में रखा और प्रतिदिन अपने सिर पर डालते रहते हैं, ब्रह्मा जी। भगवान बलि महाराज को छलने के लिए जब वो नाप रहे थे भूमंडल को, एक पैर ऊपर गया तो उसके वेग से ब्रह्मांड की परिधि फट गई और जल चूने लगा। तो ब्रह्मा जी सत्य लोक में थे, उन्होंने भगवान के चरण का स्वागत किया बहुत पुष्प से, पुष्प माला चंदन आदि से, और जो भगवान के चरणों को धो करके कारणाड़ो समुद्र का जल गिर रहा था उसको उन्होंने कमंडल में रखा। और वही बाद में जब भगीरथ जी ने तपस्या किया तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल से कुछ जल गिराए, तो उसको भगवान शिव ने अपने जटा में धारण किया। तो ये दोनों भगवान के चरण कमलों के भक्त हैं। शिव जी आज तक गंगाधर हैं, गंगा जी को अपने जटा में धारण करते हैं। तो शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमल में की वंदना करते हैं। शिव विनंसी नूतन क्योंकि शरण्यम, वास्तव में भगवान का चरण कमल ही शरण लेने योग्य है। शरण्यम, शरण्यम का अर्थ है महासुख करम। भगवान का चरण कमल ही परमानंद देगा, परम सुख देगा। तो भृत्यार्थी हम और भक्त पर आए हुए किसी भी संकट का निवारण कर देता है। केवल तत्कालिक संकट का ही नहीं, सांसारिक संकट का ही निवारण नहीं करता है, बल्कि प्रणतपाल भवाब दीपोतम उसके संसार संकट को भी पार कर देता है, जन्म मृत्यु के बंधन से भी पार कर देता है भगवान का चरण कमल। भृत्यार्थी हम, यदि भक्त पर कोई संकट आ जाता है सांसारिक, जैसे मान लीजिए धन की कमी हो गई हो, रोग हो गया हो, या और कोई भी संकट को भगवान दूर कर देते हैं और इसके साथ ही साथ जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं, तो ऐसे प्रभु के चरणारविंद की मैं वंदना करता हूँ। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कलयुग में लोग इस तरह से कह कह कर भगवान की आराधना करते हैं। ध्येयम् सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। प्रणत पाल भवाब्धिपोत, भगवान प्रणत पाल। अब भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए कहते हैं, देखिए भगवान इतना आप्त काम है, पूर्ण मनोरथ है, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, वे किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। वास्तव में उनको अयोध्या से महाराज दशरथ ने कहा नहीं था कि तुम चले जाओ वन में, लेकिन भगवान ने जब ही सुना कि माता कैकेयी ने ऐसा वर मांगा है तो बस वन जाने के लिए तैयार हो गए। पिताजी ने कहा नहीं तो भगवान को कोई कामना नहीं है अपने लिए, लेकिन भक्त के मनोरथ को पूरा करने के लिए कितना व्यग्र रहते हैं कि सीता जी की इच्छा को पूरा करने के लिए सीता के कहने पर एक कपटी मृग के पीछे दौड़े। ये भगवान राम की दयालुता है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, राज्य को तिनके की तरह छोड़कर चले गए पैदल, बिना पद त्राण के, बिना जूता के, लेकिन प्रिया जी के कहने पर एक मृग के पीछे दौड़े, मृग को पकड़ने के लिए या वध करने के लिए। इसे दयालुता की याद करते हुए करभाजन जी कहते हैं कि कलयुग में लोग भगवान श्री राम की इस तरह याद करते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्ज वचसा जदगादरण्यम माया मृगम दैतयेप्सित मन्वधाव वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राजलक्ष्मी दशरथ धन सुनि धनद लजाई। रामचरितमानस में कहा गया है कि दशरथ जी के पास जो धन था उस धन की चर्चा जब स्वर्ग में अलकापुर में चलती थी तो कुबेर जी लज्जित हो जाते थे, अरे बाप रे बाप इतना धन, दशरथ धन सुनि धनद लजाई। तो अयोध्या के धन को पाने के लिए, अयोध्या जैसा धन पाने के लिए सुरेप्सित देवता लोग तरसते थे। देवताओं के पास वह धन नहीं था जो अयोध्या में था, क्योंकि जहां साक्षात लक्ष्मीपति अवतार लिए हैं तो धन का क्या कहना। सुरेप्सित राज लक्ष्मी, तो अन्य ही सुदुस्त्यजा या सुरेप्सिता राज लक्ष्मी ताम त्यक्तवा अरण्यम आगात। भगवान ने अयोध्या का राज छोड़ दिया, कैसा राज्य, सुरेप्सिता देवता लोग चाहते थे, कामना करते थे, भगवान से कभी कभी मनाते थे, हे भगवान हमको भी ऐसा राज्य मिले। तो उनको अपना स्वर्ग फीका लगता था अयोध्या के राज्य के सामने। तो सुरेप्सिता, सुरई अपि इप्सिता, इच्छिता, राज्य लक्ष्मी की विशेषता, अयोध्या के साम्राज्य लक्ष्मी की इच्छा देवता लोग करते थे। और वह अन्य सुत उसते कौन उसको त्याग सकता था, केवल श्री राम है जिन्होंने त्याग दिया उस धन को, और कौन त्याग सकता है। तो अन्य सुत दुस्त्यज, बहुत कठिन है, दुस्त्यज ही नहीं सुत दुस्त्यज लिखा जा रहा है, सुत दुस्त्यज बहुत कठिन है छोड़ना। लेकिन ऐसे राज लक्ष्मी को श्री राम ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? धर्मिष्ठ, क्योंकि धर्म में तत्पर थे, धर्म का पालन कर रहे थे, भोगों के पीछे नहीं थे। और धर्मिष्ठ से तात्पर्य इतना भी अपने कर्तव्य परायण, अपने कर्तव्य में लगे थे कि आर्ज वचसा आर्जस्य गुरु हो दशरथ, दशरथस्य वचसा, अपने गुरु अपने आर्ज पिताश्री दशरथ जी के वचन से राज छोड़ दिए। राज छोड़ने के लिए ये आर्जवत्सा नहीं शब्द कहा जा रहा है, आर्जवत्सा जद अरण्य मगात, इसके लिए त्याग दिया भगवान ने अपनी इच्छा से। अरण्य मगात, जो प्रभु अरण्य में आ गए, वन में आ गए, वन दुखमय स्थान होता है। हाँ, वैकुंठ बिहारी भगवान अयोध्या का सुख भोगते, लेकिन वे बिना पद त्राण के, बिना भोगों के बन बन घूमते रहे 14 वर्ष के लिए। तो भगवान की कृपालुता की याद कर रहे हैं कर्भाजन जी, अथवा कलयुग में जो भी जन्म लेंगे सुमेधा, वे इस तरह भगवान राम की लीलाओं को की याद करेंगे। अपने छोटे भाई के लिए, भरत के लिए राज छोड़कर वन में चल देना, ये बहुत बड़ी बात है दूसरों के लिए। इसीलिए अन्य सुदुस्ते जाकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता राज्य त्यागने के लिए। आज के युग में भाई भाई में कितना झगड़ा है आप देख ही रहे हैं, लेकिन ऐसे भी भाई हुए हैं कि एक भाई कहता है कि पिता ने तुमको राज्य दिया है इसलिए तुम्हारा है, और छोटा भाई कहता है कि आप हमारे बड़े भाई हैं इसलिए आपका राज्य है। भगवान श्री राम कहते थे नहीं, पिता ने तुमको दिया है, पिता ने तुमको दिया है। तो भरत जी कहते थे पिता की बात छोड़िए, जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनका बनाया हुआ नियम है कि जेठ को राज मिलना चाहिए, तो सबकी आज्ञा का आप पालन कीजिए, मैं राज नहीं लूंगा। तो अयोध्या का राज भरत और श्रीराम के बीच फुटबॉल की तरह मारा मारा फिरता था। वो कहते थे तुम्हारा है, वो कहते थे नहीं तुम्हारा है। यह भगवान ने आदर्श दिखाया। तो राज त्याग कर वन में जाना और वन के कष्टों को सहना एक भक्तों के हृदय को बहुत प्रभावित करता है। कलयुग में जो भी भक्त होंगे वे भगवान श्री राम के इन लीलाओं को याद करेंगे। धर्मिष्ठ थे, आर्ज वचसा, अपने पिताश्री के वचन से राज छोड़कर वन में चले गए। क्या इनके पिताजी ने कहा था? वास्तव में पिताजी ने डायरेक्ट नहीं कहा भगवान से। एक बार महाराज दशरथ स्वर्ग गए थे, भगवान इंद्र ने उनको बुलाया था, उनको बहुत परेशान कर रहे थे दैत्य। तो महाराज दशरथ से उन्होंने विनय किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए इन लोगों को मार पीट करके। तो महाराज दशरथ रक्षा किए। तो उस समय महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ की सहायता किया था युद्ध में। वो क्षत्रियाणी थी और बहुत ही सुंदरी थी, कुशल थी, बहुत श्रेष्ठ राजा की पुत्री थी वह। महाराज कैकेयी की पुत्री थी इसलिए उसको कैकेयी कहते। कैकेयी एक देश है, एक एक प्रांत है भारत में। तो महाराज दशरथ वास्तव में उसमें आसक्त भी थे, तो वे जहां जाते थे उसको लेकर जाते थे। तो युद्ध में उसने महाराज दशरथ की रक्षा किया था। तो उस समय बहुत अबलाइज्ड हुए, उन्होंने बार बार कहा कि प्रिय हमसे तुम वर मांगो, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन वो पति व्रता स्त्री थी, उसने पति से लेना नहीं चाहा। वो टालती गई, नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो टालने के लिए उसने कह दिया कि ठीक है बाद में मांग लूंगी। तो महाराज दशरथ तो प्रसन्नता से देना चाहते थे, तो बात वहीं बंद हो गई। लेकिन जब मंथरा से बात होने लगी कही कही कि बहुत काल के बाद, मंथरा ने ऐसी बात कही कि कही कही कि मति बिल्कुल पलट गई, बिल्कुल पलट गई। वो यही कह दी कि ठीक है राजा दशरथ राम को राज्य दे रहे हैं, यह बिल्कुल उचित। कही कही मंथरा कहती है, कही कही जी रानी जी अगर यह किसी से वोट लिया जाए, पूछा जाए कि राम को कौन राजा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि राम को राजा बनाना चाहिए, मेरी भी इच्छा है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको क्यों नहीं बताया राजा दशरथ ने, 15 दिन से तैयारी चल रही है, और जबकि वो केवल आज की बात है, आज की बात है, महाराज गुरु वशिष्ठ से बात करके राजा दशरथ कल राम को राज देना चाहते थे, आज बात हो रही, और ये झूठ बोल रही थी मंथरा कि 15 दिन से अयोध्या सजाई जा रही है और राजा रोज आपके बेड पर आते हैं और आपसे इस विषय में बात नहीं की है। ये बात सुन करके कई कई को लगा कि अरे इतना क्यों छिपाव कर रहे हैं, उसको सोचना चाहिए कि ये दुष्टा झूठ बोल रही है, इतना विवेक होना चाहिए था रानी में, अपना एसोसिएट बहुत ऊंचा रखना चाहिए, थर्ड क्लास के लोगों को नहीं रखना चाहिए अपने साथ। ये कैकई जो थी यह बहुत बड़ी गलती कर रही थी कि अपना एसोसिएट और थर्ड क्लास की दासी रखी थी, और ये भी नहीं पूछी थी कि वो किस कुल की है, कहाँ से आई है। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है जब महाराज दशरथ मर गए और तब विचार होने लगा कि ये कहाँ की मंथरा है, तो पता ही नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं पता चला कि कहाँ की है, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा गया। तो वो फूट डालने लगी, कहने कि क्यों ये राजा दशरथ आपसे कपट कर रहे हैं, और राम को वो जो राज दे रहे हैं तो कौशल्या के कहने से दे रहे हैं, जबकि कौशल्या से भेंट भी नहीं हुई थी राजा दशरथ की, कौशल्या के कहने से दे रहे हैं, और ये प्लान है कि भरत को यहाँ से भेज दो ननिहाल, नहीं तो रहेगा तो राज्य में दखल देगा। बताओ भरत जैसे बेटा पर भी इतना कुशंका करना, क्या भरत राजा बनेगा? अभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन इन लोगों का कपट तो देखो। तो मंथरा बता रही थी उसको तो भेज दिया नलिहाल, और इधर कौशल्या के कहने से कल राज्याभिषेक की तैयारी हो गई और तुमको खबर भी नहीं दिया गया, और वो भी दैव जोग से मैं मिल गई तब खबर दे रही हूं, नहीं तो अब तक खबर नहीं मिलती। अधर बुद्धिरान, स्त्रियां ती अधर बुद्धि होती है, इसको अब ऐसे अधर बुद्धि होती है। अधर बुद्धि का मतलब जानते हैं क्या होता है? स्त्रियों की बुद्धि ओठ पर रहती है, कोई कुछ कहा बस बदल जाएगी, अधर बुद्धि इसको कहते हैं। वो आप ये सिखाइए वो मान जाएंगे, और दूसरा सिखा दिया बस जाए, दूसरे के ओठों पर ही उनकी बुद्धि रहती है, जो बोल दिया मान लेती है। फिर कहने लगी, अरे बहुत लंबा संवाद है, वो कहने में तो 2-3 घंटा यहीं लग जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा संवाद है, लास्ट में इसने तैयार कर लिया। तो कई कहती है मैं जा करके अपने बाप के यहाँ भाई के यहाँ जन्म बिता दूंगी, लेकिन जीते जी सौत की सेवकाई नहीं करूंगी, मैं इसका गुलाम बनकर नहीं रहूंगी। मंथरा ने कह दिया कि जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा तो समझ लो भरत को उसी दिन कारागृह में बंद किया जाएगा, और लक्ष्मण मंत्री बनेंगे राम के। लक्ष्मण को तो जानती हो ना, लक्ष्मण बहुत बदमाश है, हमको कई बार पीटा है, ये कह रहे वह मंत्री बनेगा राम का, और तुमको कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, सेवा करोगी, रानी नहीं रहोगी। पहले डांट दिया था कई कई ने उसको कि ऐसा घर फोरी ऐसा मत कहो ये ना कहो, तो कहती है कौन निरप हो हम ही कहानी, हम अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ,
अरे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मैं तो रानी बनूंगी नहीं। अरे तो ऐसे ही विधाता ने कुरूप बना दिया, अब तो दूसरे का काम करके ही जीना है खाना है, हमको क्या फायदा है भरत के राजा बनने से और क्या घाटा है राम के राजा बनने से। लेकिन मैं तो आपके लिए चिंतित हूँ, खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, साँच कहे नहीं दोष हमारे, आपका खा रही हूँ आपका पहन रही हूँ, इसलिए साँच कहने में क्या दोष। लेकिन हमारे स्वभाव में आग लग जाए कि आपका अनहित मुझसे नहीं देखा जाता है, आपका कहीं काम बिगड़ रहा हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा स्वभाव खराब विधाता ने बना दिया। वाह रे वाह, इस तरह से बोल रहे, पता नहीं विधाता ने ऐसा स्वभाव क्यों क्यों दिया। मुझे अपने बारे में तो सपने में चिंता नहीं होती है, केवल आपके विषय में सोचती रहती हूँ, ऐसे क्यों स्वभाव हो गया, आग लग जाए हमारे स्वभाव में, अब इस पर क्यों नहीं विश्वास करेगी, कह गई तो कर गई। लेकिन अब कहने लगी अब तो हो गया, अब क्या उपाय होगा, अब क्या उपाय होगा। देखिए नारी की कमजोरी, तो कई कई रोने लगी कि अब क्या उपाय होगा, अब क्या उपाय होगा, विश्वास कर गई कि ये हमारा सुहृद है। और तब वो कहती है सुनो रानी, सुनो सुनो सुनो, उपाय बहुत है, धैर्य रखना चाहिए। आपने एक समय कहा था ना कि राजा दशरथ आपको दो वर देने के लिए कहे हैं, तो इसको याद रखिए। हाँ हाँ, तो ये कहते एक वर से अपने पुत्र को राज्य मांगो और दूसरे से राम को वन में खदेड़ो, करो वन में, बस कौशल्या का सारा हौसला पूरा हो जाए, खत्म हो जाए। तो अब देखिए कैकेयी जैसी महान स्त्री अपने पति के साथ जो इतनी गुप्त वार्ता हुई है उसको इस दासी को सुनाई थी बहुत पहले। मनुष्य कहाँ मार खा जाता है, इतिहास पढ़ने पर पता चलता है, यदि उसने नहीं बताया होता मंथरा को ये दो वरदान की बात, तो शायद अब कोई उपाय नहीं था कि राम को वन में कर देती, वो रो करके ही रह जाती, जो कुछ होना था होना था। पति से बात हुई है एकांत में, उसको और किसी से न कह करके उस थर्ड क्लास की दासी से कही थी। स्त्रियों के हृदय में पेट में बात पचती नहीं है, तो वही सबसे महामंत्री मिल गई थी, उसी से अब राय कर रही थी, पूछ रही थी, शायद इसलिए भी पूछा होगा कि क्या मांगू पति से, तुम बताओ, तुम बहुत पंडित हो। तो देखिए मौके पर वही उसका मंथरा से कहना ही घात कर दिया। मंथरा ये ऐसे बोल रहे कि आपको सुधी है कि नहीं, एक बात आपने कहा था, तो कहती है नहीं, क्या बात है, मतलब जब आप लोग स्वर्ग गए थे तो राजा दशरथ आपको दो वर देने के लिए कहे थे, तो कई कई कहते हैं हाँ, तो बस यह मांग लो, अब इसी पर तैयार हो गए। ठीक है ठीक, तो कई कई क्या कहती है, तो ही सम हितन मोर संसारा, बहे जात कई भयसिया धारा, इस संसार में तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी कोई नहीं है, मैं तो नदी की विकराल धारा में बहती जा रही थी, तुमने छान लिया, निकाल लिया हमको, और जबकि वही इसको विकराल धारा में ठेल रही है, अब वो विधवा हो जाएगी चार दिन के बाद ही। लेकिन कितना उल्टा आदमी सोचता है, ये सोचता है हमारे हमारी हितैषिणी है, ये है ऐसा है ऐसा, तो खूब सराहना कर रही थी, कहती है कि परम कूप तुअ वचन पर सकऊ पुत पति त्यागे, मैं तुम्हारे वचन पर कुआं में कूद पड़ूंगी, कई कई कहती है, और अपने पुत्र भरत को और भतार दशरथ को भी छोड़ दूंगी, तुम कहोगी तो हमारा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, पति को तो देख ही लिया कि इतना कपट कर रहा है, तो अब क्या उस पर विश्वास करना है, हमारे लिए विश्वासास्पद सबसे बढ़कर तुम हो, और अगर तुम्हारा अगर हमारा मनोरथ पूरा हो गया, भरत राजा बनेंगे राम वन में जाएंगे, तो तुम्हें मैं आंख की पुतली बना करके रखूंगी, ऐसा करूंगी। तुम कहती हो कि क्या लाभ होगा भरत को राज मिलने पर, देखना तुमको मैं महारानी की संज्ञा दूंगी, और अब ये सब सेवा हुआ मत करना, आनंद से फ्लैट दे दूंगी, खाना पीना सब, मर्सिडीज कार दे दूंगी, घूमना आराम से और इस तरह से कहे तो ये कह करके भेज दी कोप भवन में। कोप भवन जहाँ राजकीय लोगों को कोई भी दुख होता था तो जाते थे, राजा वहाँ विजिट करते थे 24 घंटे में एक बार। तो राजा दशरथ उस दिन यह संवाद देने के लिए कैकेयी के घर में जा रहे थे। वहां जाने पर पता चला कि कैकेयी कोप भवन में चली गई, कंप्लेन भवन कहिए जो भी है वहां चली गई थी। तो राजा तो बहुत दुखी हुए, बहुत लंबी कथा है। वहां गए, वो खादी पहन करके मोटा कपड़ा नीचे पड़ी हुई थी, पलंग पर नहीं थी। राजा पूछने लगे तुमको क्या दुख है, किसने मारा है, किसने क्या किया, किससे दुख है, किसका सिर काटना है, किसको मारना है, तुम्हारा बैरी अगर देवता भी होगा तो उसको मार दूंगा। लेकिन वो उठ नहीं रही थी, बार बार जब मनाए तब कहती है कि आप देने देने को तो बहुत कहते हैं लेकिन न कभी देते हैं न लेते हैं, दो वरदान देने के लिए कहे थे वो भी देंगे कि नहीं देंगे, अब ज्यादा मैं क्या मांगू, पहले का पुराना ही दे दीजिए। तब राजा दशरथ कहते ओ मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, मैं भूल गया, सॉरी सॉरी मैं भूल गया था, दो के बदले तुम चार मांगो, दस मांगो दे दूंगा, लेकिन उठो 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 उठो, आज राम का राज्याभिषेक करना है। तुम बार बार हमसे कहती थी कि राम को राजा बनाइए, राम को राजा बनाइए, तो तुम्हारा मनोरथ कल पूरा हो जाएगा, आज उठो उठो सुमंगल साज सजो। इतना सुनते हैं उसका कलेजा दहल गया। अब उसने रियलाइज किया कि मंथरा सही कह रही थी और राजा दशरथ तो प्रेम से बोल रहे थे कि तुम उठो उठो, तुम्हारा कहा हुआ पूरा होने जा रहा है, तुम राम को राजा राज देने की बात करती। तो दल के उठे उसने हृदय कठोर, जिम छुई गय पाक बरतोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ की ये बात सुनकर के उसका हृदय दलक उठा, दुखित हो गया, जैसे पका हुआ बरतोर घाव कोई छू दिया हो, इतना दुख होता है, दुख दर्द देता है बरतोर घाव, उस तरह से उसका हृदय दलक गया। पहले तो सुनी थी कि राज दे रहे हैं राम को और अब कह रहे हैं कि राम को राज दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ऊपर से खूब मीठा मीठा बोल रही थी, उसके कपट को महाराज दशरथ समझ नहीं रहे थे। वहीं पर कहा गया कि विधिहुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघय अवगुण खान। ब्रह्मा जी भी नारी के कलेजा में क्या है नहीं जानते हैं, सारा कपट और सारा अघ का खान होता। और एक स्त्री की गलती पर और सबको गाली दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, स्त्री जाति में भी कुछ लोग बहुत ऊंचा हुए हैं, जैसे महारानी कुंती, द्रौपदी, गोपी जन, देवहूति माता, बहुत ऊंची ऊंची हुई हैं। लेकिन अब दुख में कभी कभी ये बात कह देते हैं, विधिहुन नारी हृदय गति जानी, और क्या हृदय की गति जानेगा नारी की। ब्रह्मा जी जो हृदय बनाए हैं और उसमें जो विचार भरे हैं उनको भी पता नहीं चलता। तो उठ करके खड़ी हो गई, लगी प्रेम से देखने झुठमुठ के, और राजा दशरथ से समझे कि ओ थोड़ी बात के लिए इतना दुख हो गया, उठो उठो ठीक है ठीक है। तब कहती है सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, प्राण प्रिय कह रही है, हमारे प्राणनाथ हृदय में भारी कपट है, दुर्भावना है, लेकिन ऊपर से बोल रही है प्राणनाथ मेरे मन में जो अच्छा लग रहा है ये सुनिए, दे हूं एक बार भरत ही टीका, मेरे मन में ये इच्छा है कि राम के बदले भरत को राज दीजिए। तो राजा दशरथ इतना तक तो बिल्कुल प्रसन्न थे, कोई बात नहीं, राम तो राज्य के भूखे नहीं है। लेकिन देर नहीं किया इसने, तुरंत ही कहा मांगो दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवास। अब इतना सुनते ही राजा दशरथ तो मूर्छित होकर के गिर गए, कुछ देर तक गिरे रहे, और जब होश हुआ तो कहते हैं कि मजाक, तुम मुझसे परिहास कर रही हो, क्या कर रही हो, रोते रोते पूछ रहे। कल राम कल भरत राजा हो जाएगा, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। मैं राम को जानता हूँ, राज्य के भूखे नहीं है, ना ही न राम राज्य के भूखे, और भरत पर उनकी प्रीति भी बहुत है। तो ये तो हो जाएगा कि राम को राज नहीं दिया जाएगा, लेकिन भरत को राज दिया जाएगा, लेकिन प्रिय जो दूसरा वर जो तुम मांगी हो, ऐसा क्यों मांग रही हो? राम को रहने दो अयोध्या में, वो राजा नहीं रहेंगे, लेकिन अयोध्या में रहने दो, ये ऐसा रहने दो, ये रहने दो। लेकिन अब जब इस तरह से लगे कर दे, तब वो क्रोधित हो गए, क्रोध को प्रकट कर दी। यही बार बार आप अपनी सराहना कर रहे थे ना कि रघुवंश में मेरा जन्म हुआ है, रघुवंश में जन्म हुआ है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन में जाई, ये कह रहे थे ना। अब क्या दूसरे कुल में जन्म हो गया? अब कहाँ गया आपका वचन? और मुझे प्रपंच अच्छा नहीं लग रहा है, सीधा सीधा कहिए, होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरण राहुल अजस, नृप समझिए मन मा। अगर सवेरा होते होते राम वन में नहीं गए तो मैं तो निश्चित आत्महत्या करूंगी, मैं मरूंगी, और आपको जो संसार में अपजस लगेगा वो तो धोने से भी नहीं धोया जाएगा, आप भी देख लीजिए, और मैं तो मरूंगी। या तो राम को वन में जाना है, नहीं तो मेरा मरण होगा, दो में से एक तो होगा ही, और आपको अजस लगेगा। इतना कठोर बोल दी। अब हम मैं दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते, अब आप स्त्री की तरह मत रो, ये स्त्री तो मैं हूँ, और आप यहाँ जनी अबला जी में करुणा कर रहा हूँ, ये अबला जैसा विलाप मत कीजिए, क्षत्रिय हैं, राजा हैं, धीरज रखिए, इतना शिक्षा दे रही थी, चले थे, सत्यवादी हैं सत्यवादी। जब यही करना था तो क्यों वचन दे रहे थे, क्यों सत्यवादी बन रहे थे? शर्म नहीं लगती है वचन दे करके और हा राम कर रहे हैं, बहुत बोल रही थी। रामायण में लिखा गया कितना ज्यादा बोल रही थी, पहले प्राणनाथ कही थी, प्राण प्रिय कही थी, अब इतना क्रूर वचन बोल रही थी। तो महाराज तो बिल्कुल मूर्छित होकर गिर गए। गिरे गिरे पूरी रात बीत गई। महाराज दशरथ प्रतिदिन 3:30 बजे जगते थे, भोर में जगते थे, लेकिन आज सूर्योदय हो गया, वो तो बेहोश पड़े थे। आज ही राम को राज्य अभिषेक देना था, राजा बनाना था, तो सब जितने भी बंदी थे, मागध थे, सेवक थे, सब द्वार पर जो रहे थे, क्या हुआ क्या हुआ? महाराज दशरथ आज जग ही नहीं, आज तो और ज्यादा पहले जगना चाहिए था। तब लोग सुमंत जी को भेजे, मंत्री को, कि आप देखिए राजा दशरथ जी कहाँ हैं, कैसे हैं। तो उनको पता लगा कि कोप भवन में गए। वहां जब सुमंत जी गए तो देखे कि महाराज गिरे हुए हैं। ऐसा लगता था कि जैसे वृक्ष को बिजली ने मार दिया हो, वज्रपात हो गया हो गिर पैर, मुकुट बिखर गया था, रो रहे थे, मुख से झाल गाज निकल रहा था, और हा राम बोल रहे थे धीरे धीरे। तो सुमंत जी कुछ सहम गए और पूछने लगे कि माता जी क्या बात है, महाराज की ऐसी दशा क्यों है? तो कई कई कहती है कि ऐसी दशा इसलिए है कि राम पर इनकी बहुत ज्यादा प्रीति है, यह बात है। इन्होंने मुझे दो वर देने को कहा था, मैंने मांगा, भरत को राज्य मांगा, राम को वनवास मांगा, इसी पर इनकी ये हालत हुई है। आप जाइए राम को बुला लाइए। तो अब महाराज दशरथ से बात भी नहीं हो पाई सुमंत जी की। सुमंत जी गए और भगवान श्री राम जहां थे, आज उनको राज्य देना था, लेकिन सुमंत जी गए उनको लेकर के। तो सुमंत जी को वैसे प्रणाम किया भगवान ने जैसे अपने पिता को करते थे, पिता जैसे प्रणाम किए। और तो सुमंत जी ने कहा कि आप चलिए, एक जगह चलना है, तो लेकर के चले। कभी पैदल नहीं चलते थे सुमंत जी अयोध्या की गलियों में, लेकिन श्री राम को लेकर के उस दिन पैदल जाने लगे। सब लोग देख रहे थे क्या बात है, क्या हो गया, आज पैदल जा रहे हैं मंत्री और राम भी जा रहे हैं, खुशगुन जैसा लग रहा था। तो वहां गए, सुमंत जी ने बीच में कुछ नहीं कहा था, केवल यही कहा था कि आप चलिए वहां। तो वहां जाने के बाद भगवान ने देखा कि पिताजी ऐसे बेहोश होकर गिरे पड़े हैं, और माता कई कई ऐसे विधवा जैसा वस्त्र पहन करके और बैठी। तो सबसे पहले भगवान प्रणाम किए कई कई को, ठीक मातृभाव से प्रणाम। और प्रणाम करके पूछते हैं कि माँ ये पिताजी ऐसे क्यों पड़े हुए हैं, नीचे जमीन पर गिर गए हैं। तो वो सीधा कहती है, सुनो राम, राजा से तुमको बहुत प्रीति है, वो प्रेम त्याग नहीं पाते हैं। ऐसी ऐसी बात हुई थी, मुझे वर देने के लिए कहे थे, मैं मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांगा, तो मैंने भरत को राज्य मांगा और तुमको मैंने ये कहा है कि उसको बात को सुन करके कि वन में जाना। तो कहा इतनी छोटी सी बात के लिए पिता को इतना बड़ा दुख लग गया। भगवान कहने लगे, माता कहे कैसे, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। सुनो माँ, वही पुत्र धन्य है जो अपने माता पिता के वचन को मानता है। तो वचन मेरा तो सबसे बड़ा हित यह होगा कि भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि सन्मुख वही आजू। एक तो मेरे मन का जो मनोरथ है वो पूरा होगा। मैं चाहता था कि भरत को राजा होना चाहिए, ये तो भगवान ने मेरा मनोरथ पूरा कर दिया। ये भगवान बोल रहे हैं एक मनुष्य की भाषा में। और दूसरा, मुझे वन में जाने की बहुत काल से इच्छा थी। मैं शहर में रहना पसंद ही नहीं करता हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं बड़े बड़े भक्तों से, ऋषि मुनियों से सत्संग करूं, भागवत सुनो, पढ़ूं, सत्संग करूं, तो वन में मुझे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ, तो दोनों काम हो गया, मेरा भी मनोरथ पूरा हुआ, भरत को राज मिलेगा, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इस पर जब बातें चल रही थी तो महाराज दशरथ धीरे धीरे नेत्र खोले, कुछ नहीं, होश हुआ। होश हुआ तो भगवान जाकर उनको प्रणाम किए, प्रणाम किए तो भगवान को अपने गोद में ले लिए हुए और कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे। भगवान से यही मना रहे थे कि हे प्रभो, हे विष्णु, आप सबके हृदय में रहते हैं, आप राम को ऐसी मति दीजिए कि राम मेरे वचन की अवहेलना करके अयोध्या में रह जाए। राम यह कह दे कि मैं वन में नहीं जाऊंगा। महाराज दशरथ के लिए यह कहना कठिन था कि मैं कह दूं कि वन में मत जाओ। वन में जाने के लिए भी नहीं कह रहे थे, लेकिन यह भी नहीं कह सकते थे कि वन में मत जाओ। अब तो एक तरफ वचन था, एक तरफ राम का प्रेम था, लेकिन मना रहे थे, भगवान शंकर से मना रहे थे, भगवान विष्णु से मना रहे थे कि राम को ऐसी मति दीजिए कि हमारे वचन की अवहेलना कर। लेकिन इस तरह से कहते कहते अंत में भगवान सोचे कि ये कर्तव्य है, तो उन्होंने कहा कि पिताजी, आप इस छोटी सी बात के लिए चिंता मत कीजिए, आपके चरणों के आशीर्वाद से मैं बहुत शीघ्र पूरा कर लूंगा 14 वर्ष वनवास और फिर आपका चरण देखूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूं। और इतना कह करके भगवान निकल गए। फिर सीता जी साथ में हो गए, लक्ष्मण जी साथ में हो गए, भगवान पैदल बन बन घूमते रहे, घूमते रहे, घूमते रहे। तो इस लीला में यही स्मरण किया जा रहा है कि जो प्रभु अयोध्या के सुख को छोड़ दिया, अपने लिए कुछ नहीं चाहे, लेकिन अपने प्रेमी भक्त के लिए, अपनी प्रिया सीता जी के लिए एक मृग के पीछे पीछे बहुत तेज दौड़ रहे थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वह मृग उनको बहुत रास्तों से ले जा रहा था इधर उधर, और घूम घूम करके उस कुटीर के पास आ जाता था जहां आश्रम था। घूम कर भगवान को पसीना आ रहा था, पैर में कांटे चुभ रहे थे, इसका उनको ध्यान नहीं था। तो इस तरह से तो जो अपने भक्तों के मनोरथ को पूरा करते हैं, परंतु अपने लिए भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, वो सब तरह से परिपूर्ण है। इस लीला का स्मरण करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम की बहुत सी विशद लीला है। वास्तव में इस कलयुग के आराध्य हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु। थोड़ा सा ये सुन लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए इसका अर्थ क्या होगा। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेपसित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्ज वत्सा जदगादरण। भगवान भी अपने पिता के वचन से, अपने पिता के मन को देख करके मथुरा छोड़कर अरण्य मगात वृंदारण्य में आ गए। ये भी वन में आए।
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, और आगे की लीला को मिला करके कह रहे हैं कि जब कंस का वध भगवान ने किया तो वह राज्य इनका था, कंस के बाद वो भगवान का राज्य होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उग्रसेन जी को दे दिया, और उसके पहले अपने पिता का सुखद भवन छोड़ करके वृंदावन आ गए, गोकुल आ गए। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेपसित राजलक्ष्मी, ये वृंदा ये मथुरा का वैभव वास्तव में वो तो वैकुंठ है, पर व्योम है, अतः देवता भी मथुरा के साम्राज्य की इच्छा करते हैं, मथुरा की गलियों में घूमने में देवता अपना सौभाग्य मानते हैं। एक बार मैं कथा सुना था एक कथाकार से वृंदावन में कि प्रयागराज जो तीर्थराज हैं, एक बार उन्होंने निमंत्रण दिया सभी तीर्थों की, हमारे दरबार में सब आओ, तो सारे तीर्थ प्रयागराज पहुंचे, लेकिन वृंदावन नहीं गया। वृंदावन नहीं गया तो तीर्थराज बड़ा गर्म हो गए, उन्होंने भगवान के पास कंप्लेन किया कि सारे तीर्थ हमारे दरबार में आए और वृंदावन नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि पागल हो गए हो क्या, तुमको मैं तीर्थों का राजा बनाया हूं कि अपने घर का भी राजा बना दिया, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, मेरा घर है, वो तुम्हारे दरबार में क्यों आएगा, और इस तरह की दुर्भावना तुमने किया है इसलिए वृंदावन में गधा बनकर तुमको रहना पड़ेगा। जितने गधे हैं वृंदावन वास्तव में तीर्थराज प्रयाग है, देखकर प्रणाम करना चाहिए। वास्तव में ऐसे तो गधे का जन्म वृंदावन में बहुत दुर्लभ है, यहाँ तो तृण बनने के लिए ब्रह्मा जी तरसते हैं, उस रज को पाने के लिए उद्धव जी तरसते हैं, लेकिन प्रयागराज में ये अपराध किया था इसलिए उनको दंड यहाँ दिया गया। क्यों ऐसी दुर्भावना किया, तो यहाँ के राज्य और यहाँ के आवास यहाँ की धूली के लिए देवता भी स्प्रिया करते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेपसित राज लक्ष्मी, धर्मिष्ठ जो धर्म परायण, धर्म का प्रचार करने के लिए वैष्णव धर्म का, कृष्ण कितना अट्रैक्टिव है, गोपी भाव ब्रज भाव आदि का प्रचार कराने के लिए आर्ज वचसा, यहाँ आर्ज वचसा का अर्थ है नारद जी के वचन से या ब्रह्मा जी के वचन से या वसुदेव जी के वचन से अरण्यम अगात वृंदावन में आ गए, और माया मृगम जो भगवान की योग माया से मृग बने हुए थे, गो बने गाय बने हुए थे, उन गायों के पीछे दैतया दया के कारण जो दौड़ते थे ही करते हुए चराते रहते थे, ऐसे महापुरुष के चरण कमल की हम वंदना करते हैं। ये भगवान कृष्ण पर अर्थ हुआ, बहुत विस्तार से सब किया गया है। और श्री चैतन्य महाप्रभु पर अर्थ क्या है, देखत्वा सुदुस्त्यज सुरेपसित राजलक्ष्मी, वास्तव में विष्णु प्रिया का कृपा कटाक्ष पाने के लिए तो देवता तरसते ही रहते हैं, तो भागवत में प्रमाण भरा है। तो ऐसे सुदुस्त्यज राज लक्ष्मी को, विष्णु प्रिया को और नवदीप के वैभव को छोड़कर जो आर्ज बच्चा शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के साप से वचन से अरण्य मगा झारखंड वन में आ गए, उधर भी जगन्नाथपुरी भी नीलाचल वन ही है, उसको भी वन कहा जाता है, अचल है, पर्वत प्रांत है उधर, तो जो वन में आ गए, और माया मृगम दैत्य शीत मनो धावत, माया के द्वारा जो जीव नचाए जा रहे हैं, मृग का अर्थ नचाना, माया के द्वारा जो नचाए जा रहे हैं ऐसे जीवों के पीछे, केवल मनुष्यों के ही नहीं, झारखंड वन में बाघ हरिण भालू हाथी के पीछे जो हाथ उठा करके उनको आलिंगन करने दौड़ते थे, ऐसे महापुरुष के चरण कमलों की हम वंदना करते हैं। तो भगवान श्री राम श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु तीनों का वर्णन है इस श्लोक में, ऐसा हमारे आचार्यों ने लिखा है। तो इस प्रकार से प्रत्येक युग में भगवान ही आराध्य हैं, उन भिन्न भिन्न वर्ण से, भिन्न भिन्न रंग के, भिन्न भिन्न नाम से, भिन्न भिन्न विधि से। इस युग की विधि है नाम संकीर्तन और कथा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण।
सुनकर भागेंगे आकार वर्ण और विधि से भगवान की उपासना होती है, इस पर प्रवचन किए। अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि एवं जुगानुरूपा ध्यान भगवान जुगवर्त भी मनुजय इज्जते राजन श्रेयसा ईश्वरो हरि। इस प्रकार ईश्वर भगवान हरि ही इज्जते जुगवर्त भी मनुजय जुगानुरूपा ध्यान नाम रूपा ध्यान। तो दूसरे युगों में भगवान की आराधना होती है उस युग के मनुष्य करते हैं, तो जो युग के अनुरूप भगवान के नाम विख्यात होते हैं उन नामों के कीर्तन द्वारा और रूप के ध्यान और पूजा द्वारा। ईश्वर की आराधना में नाम और रूप होना निश्चित है, अन्यथा उपासना मानी ही नहीं जा सकती। जिस भजन में वे कोई भी उपासना
और नाम ना हो तो उसको उपासना
और कर्म नहीं दिखा जा रहा है। जीवन रूपा ध्यान सीता सिंगर स्वामी जी अर्थ करते हैं नाम रूपा ध्यान, जुगान रूपा ध्यान नाम रूपा ध्यान, युग के अनुसार नाम और रूप से भगवान की आराधना करते हैं। इस श्लोक में श्री भगवान के लिए तीन विशेषण दिए जा रहे हैं, भगवान ईश्वर और हरि। श्रीमद् भागवतम के कई श्लोकों में यह शब्द आया है। सबसे पहले श्री सुखदेव गोस्वामी जब बोलते हैं महाराज परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में तो यही शब्द दिए हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भवन। तो भगवान ईश्वरो हरि ये भगवान के गुण हैं। हरि शब्द का अर्थ है बहुत सुंदर है और भक्तों के दुख को हर लेते हैं, प्रेम देकर मन और मित्र हर लेते हैं और सब प्रकार का दुख हर लेते हैं, सांसारिक दुख भी और जन्म मृत्यु का दुख तो हर ही लेते हैं। और भगवान का अर्थ हुआ कि ये परम ऐश्वर्यवान है, सारे गुण हैं, छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। और ईश्वर का अर्थ है कि वे नियंता हैं जगत के, वही जगत को उत्पन्न किए हैं और उनके अधीन सभी जीव हैं। तो नहीं भजन करने पर फिर कल्याण नहीं है क्योंकि ईश्वर हैं वे। तो गीता में भगवान कहते हैं सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण लो, या अभी कहते हैं कि जो खाते हो जो करते हो जो देते हो तपस्या करते हो मेरे लिए करो, मुझमें मन लगाओ, मुझे पत्रम पुष्पम फलम दो। तो कोई व्यक्ति सोच सकते हैं कि भगवान इस तरह मांग रहे हैं तो क्या बात है, हम तो नहीं देने वाले हैं। तो नहीं देने पर फिर कुशल नहीं है, ईश्वर मांग रहा है। नहीं भजन करने वालों का कुशल नहीं हो सकता, कोई भगवान भीख नहीं मांग रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं ऐसा करो। नहीं तो गीता में कहते हैं नहीं करने
योनियों में पटकता हुआ धन योनियों में अपरात्मा मूर्धा जन्म निजन्म मुझे ऐसा नहीं कि भगवान का भजन नहीं करेंगे तो भगवान छोड़ देंगे, कोई उनका बस नहीं चल रहा है,
पता चल जाएगा नहीं भजन करने पर। ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है, यह ईश्वर का अनुशासन है, उन्हीं के नियंत्रण में हम हैं। अच्छा है ये भजन करके बैकुंठ जाए, नहीं तो फिर विविध योनियों में विविध बरकादी में बहुत भारी दुख सहना पड़ेगा। तो इस तरह ईश्वर भगवान हरि का भजन करते हैं सभी युगों में, भगवान कृष्ण आराध्य हैं, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई इस प्रसंग से। और एतेषु चतुर्युगेषु कलिरेव श्रेष्ठ इत्याह, अब कर्भागिन जी कहते हैं कि इन चारों युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ। तो इस बात को बताया जा रहा है। कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कलियुग स्वभावे अहंकार या गुणज्ञ सारभागिन जत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो विलभ्यते। जवान युगों में मनुष्यों को बहुत काल तक तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा बड़ा काम करना पड़ता है, और जब वो लोग सुनते हैं कि कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से ही सारा पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है, मुक्ति मिलती है, भगवान का प्रेम मिलता है, तो जितने भी सिद्ध जन होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो यही सोचते हैं कि कलयुग में जन्म हमारा होना चाहिए, कलयुग का स्वागत करते हैं, कलयुग से डरते नहीं हैं और कलयुग का निरादर भी नहीं करते हैं। सभाजयंती, सभाजन का अर्थ है कि वे स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों अच्छा मानते हैं कि जत्र संकीर्त लीला व सर्व स्वार्थ भी लभ्य। जिस युग में केवल संकीर्तन से ही सारा स्वार्थ पूरा हो जाता है। संकीर्तन से तात्पर्य नाम संकीर्तन और गुण संकीर्तन, लीला कीर्तन आदि सब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। आर्य गुणज्ञ सार्वभागिनः, सब दिया गया। कौन लोग कलयुग का आदर करते हैं? जो आर्य होते हैं। आर्य का अर्थ होता है जो किसी के दोष को ग्रहण करते ही नहीं। आर्य ऋजु शब्द से आर्य शब्द बना है, अदोष ग्राहिणा। कलयुग में भी बहुत दोष है, कलयुग दोष निधे राजन, लेकिन जो आर्य होते हैं वे किसी के दोष को ग्रहण नहीं करते, गुणज्ञ है और गुण को जानते हैं। जो कलयुग के गुणों को जानते हैं और सार भागिना का अर्थ है सार ग्राहिणा, धर्म गुणांश ग्राहिणा, कलयुग के गुणों को ग्रहण करते हैं या किसी भी वस्तु के गुणों को समझते हैं, अतः वो लोग कलयुग का ही आदर करते हैं, कलयुग को ही चाहते हैं। केवल भगवान के कीर्तन मात्र से सब कुछ पूरा हो जाएगा, लोक परलोक सब कुछ ठीक होगा, प्रेम मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। जो बड़े बड़े कर्मों को करने से, यज्ञ दान आदि करने से शुभ गति प्राप्त होती है, वह कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कृति जब ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जगते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तब है कीर्तनादि। सतयुग में भगवान का अखंड ध्यान लाखों बरस करने पर जो फल मिलता है, और जो फल त्रेता में बहुत भारी भारी यज्ञ सफलता पूर्वक करने पर मिलता है, और द्वापर में भगवान की विधिवत पूजा करने पर जो फल मिलता है, ये तीनों फल कलयुग में केवल नामोच्चारण से मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
ये शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवतम कह रहा है, इसीलिए आर्य लोग कलयुग को ज्यादा पसंद करते हैं। संकीर्तन से ही सर्व स्वार्थ पूरा होता है। यहाँ थोड़ा सा विरसता उत्पन्न हो रही है कि तो संकीर्तन से सारा लाभ मिलता है, इसका मतलब संकीर्तन साधन हुआ और स्वार्थ या पुरुषार्थ कोई दूसरा हुआ। केवल साधन मात्र है क्या भगवान का नाम? नहीं 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 नहीं, यतः परमो लाभ देहि नाम भ्राम्यतामिह यतो बिंदेत परमम शांतिम नश्यते संस। अतः नाम संकीर्तनात या गुण संकीर्तनात विष्णु संकीर्तनात अन्य परम लाभ न, भगवान के नाम उच्चारण के समान और दूसरा कोई लाभ नहीं है जीव को। यह नहीं समझना चाहिए कि नाम उच्चारण करने से हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वो जो वस्तु मिलेगी वो नाम उच्चारण से कम वैल्यू वाली है। सबसे बड़ा लाभ यही है। कभी कभी आदमी पूछते हैं क्या फायदा होगा नाम जप करने से, क्या फायदा होगा? उच्चारण करना ही सबसे भारी फायदा है। सबसे बड़ा लाभ यही है। न यतः परमो लाभ देहि नाम भ्राम्यतामिह,
देही नाम भ्राम्यता में सारे जीव इस प्राकृत जगत में भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण कर रहे हैं किस लिए? सुख की आशा से। भ्रमतां इह अस्मिन संसारे, भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं कि हमको यहाँ सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, और वो अभी स्वेच्छा से नहीं घूम रहे हैं। माया उन्हें विविध शरीर दे करके और विविध इच्छाएं उत्पन्न करा करके मार रही है, घुमा रही है, तड़प रहे हैं, कहीं शांति नहीं मिल रही, कुछ लाभ के लिए घूम रहे हैं। यहाँ जाने पर ये लाभ मिलेगा। कीट पतंग भी कुछ लाभ के लिए रेंग रहे हैं, पक्षी भी कुछ लाभ के फेर में उड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी देहधारी के लिए सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन सबसे भारी लाभ है। न यतः परमो लाभ देही नाम भ्राम्यता में है। लेकिन फिर भी प्रश्न बनता है कि आखिर ये लाभ तो समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए नाम हम कीर्तन हम करने लगे, फिर भी शांति न मिले, फिर भी संस्कृति नष्ट न हो, जन्म मृत्यु में रह जाए, तब कहते नहीं नहीं, जतो बिंदेत परमाम शांतिम और नश्यति संस्कृति। भगवान के नाम का साइड प्रभाव क्या होता है, गौर फल क्या होता है कि परमाम शांतिम भवति, परम सुख मिलता है जीव को और जन्म मृत्यु रूप संसार समाप्त हो जाता है, कर्म बंधन समाप्त हो जाता है, सारा दुख नष्ट हो जाता है और सब सुख मिलता है। तो वह सुख वास्तव में उद्देश्य नहीं हुआ, परम लाभ है भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का उच्चारण। न यतः परमो लाभ देही नाम भ्राम्यता में जतो बिंदेत परमाम शांति नश्यति संस्कृति। भगवान के नाम का उच्चारण हो, गुण का उच्चारण हो, भागवत कोई पढ़े सुने, यही सबसे बड़ा लाभ है। प्राय मनुष्यों के मन में ये बात धसी है कि नहीं नहीं ये साधन है, इसको करने से ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, वो तो होगा ही। जिसको हम लाभ समझ रहे हैं वो तो सारे लाभ मिलेंगे। सर्व स्वार्थ हम जो भी समझते हैं अपने मन से कि यह जरूरी है, जरूरी, वो तो सब मिलेगा। लेकिन करभाजन जी कहते हैं कि वास्तविक लाभ सबसे बढ़कर प्राणी के लिए है भगवान के नाम का उच्चारण, संकीर्तन ही सबसे बड़ा लाभ है। और उसको ऐसे बल्कि कह रहे हैं कि न यतः परमो लाभ, अतः का अर्थ है अतः अस्मात अन्य लाभ न, दूसरा कोई लाभ नहीं, यही लाभ। मनुष्य का मन ऐसा है, बुद्धि ऐसी, हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न करता रहता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक पूछ सकते हैं भगवान मिल जाएंगे तो क्या फायदा होगा उनसे, कुछ अब उनसे भी कुछ ज्यादा फायदा हो गया क्या है? भगवान भी मिल जाए तो उनसे फायदा, इसे फायदा, नाम जपने से क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है? तो पहले फायदा का ही अर्थ समझना चाहिए ना। लाभ और फायदा का मतलब क्या होता है? न यतः परमो लाभो देही नाम भ्राम्यता में है जतो बिंदेत परमाम शांति न सत्य संस्थ। और अब कह रहे हैं कि महाराज सतयुग में जन्म लेने वाली प्रजा मनाया करती है, हे भगवान हमको कलयुग में जन्म दीजिए। जब तपस्या करते करते, यज्ञ करते करते वे लोग थक जाते हैं तो सुनते हैं कि कलयुग में बहुत थोड़ी उम्र होती है, लेकिन थोड़ी उम्र में ही भगवान का कीर्तन करके और जीव वैकुंठ चला जाता है। तो लोग यही मनाते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में होना चाहिए, क्योंकि कलयुग में और कर्म की अपेक्षा नहीं है। सतयुग आदि में नाम कीर्तन करते हैं ठीक है, लेकिन इसके साथ और करना पड़ता है तब फल मिलता है। यज्ञ करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, पूजा करनी पड़ती है, तब जा करके फल मिलता है। लेकिन कलयुग में केवल नाम कीर्तन से गुण कीर्तन से मिल जाता है भगवान का धाम। तो अच्छे लोग यही मनाते रहते हैं कि हे भगवान हमारा जन्म कलयुग में दीजिए, जैसे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। आज के युग में कभी कभी उच्च जाति में जन्म लेने वाले लोग सबर्ण है, कभी भी मनाते हैं कि कहीं नीच जाति में जन्म हुआ होता वही अच्छा होता, क्योंकि आरक्षण मिलता है वहां जन्म लेने। हाँ सोचा करते हैं। ऐसे देख ही रहे हैं क्या तमाशा चल रहा है, क्या करे। उच्च वंश में जन्म लिए हैं, पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन उनका अधिकार ही नहीं है कि उनको नौकरी मिलेगी या कोई सुविधा मिलेगी। तो सारी सुविधा छोटे वंश में जन्म लेने वालों को है, तो बेचारे मनाते हैं कि बल्कि हमारा जन्म उसी में हुआ होता। तो सतयुग में जन्म लेने वाले बेचारे ठीक ऐसा ही सोचते हैं कि हम तो घाटा में पड़ गए, बल्कि कलयुग में जन्म हुआ होता थोड़ा ही करके पार हो जाता। कितना दिन जिएंगे, कितना साधन करेंगे। तो लोग मनाया करते हैं, कृता दिशु प्रजा राजन कलव इच्छन्ति संभवम। कृता दिशु, कृत मतलब सत्ययुग, सतयुग त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में मनुष्य मनाया करते हैं, सुनते हैं कि कलयुग में आसानी से कीर्तन करके सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हाय रे, जिनको जन्म कलयुग में मिला हुआ है वो कीर्तन नहीं कर रहे। अब बताइए, वो टीवी देख रहे हैं। जितना देर तक वास्तव में आदमी टेलीविजन देखता है उतना कहाँ कीर्तन कर रहा है, जब कर रहा है। जो लोग भक्त बन गए हैं वो लोग करते हैं, नहीं तो बाकी। तो ध्यान रखिए कि एक बार भजन नहीं करने पर तो बहुत दुर्गति होगी, और बाद में सतयुग में कभी जन्म मिलेगा तो कमर टूट जाएगी साधन करते करते, यह चांस चला जाएगा। कहते हैं कि कृता दिशु प्रजा राजन कलव इच्छन्ति संभवम। संभवम का अर्थ जन्म। सतयुग आदि की प्रजा, सतयुग आदि के मनुष्य चाहते हैं कि कलयुग में जन्म होगा, किस लिए कि कलव खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। हम कलयुग में नारायण परायण हो जाएंगे, भगवान का भक्त बनेंगे, बहुत शीघ्र हो जाएंगे। और कलयुग में नारायण परायण क्या होना, हरे कृष्ण उच्चारण कीजिए बस सब कुछ हो गया। कलयुग इतना डिग्रेडेड युग है, इतना गिरा हुआ युग है, तो आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तिलक कर ले तो उसी को लोग कहते हैं ब्राह्मण, महाराज, देख रहे हैं ना। इतना तिलक करने वाले कम हो गए कि अगर कोई भी व्यक्ति तिलक कर ले, थोड़ा सीखा रख ले, तो पंडित जी कहते हैं, पंडित जी, महाराज, बहुत कमी हो गई। और थोड़ा सा यदि जप करने लगा, कुछ पढ़ने लगा भागवत आदि, तो थोड़ा सा श्लोक बोल दे तो उसको कहते हैं महाभागवत। क्योंकि भागवत का भी अर्थ नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, जो कुछ मिलेगा। तो एक बार की घटना सुना रहा हूं मैं आपसे। मेरे साथ एक लड़का गया था अमेरिकन कॉन्सुलेट में, कॉन्सुलेट में वीसा लेने के लिए, बिहार का लड़का था, मेरे साथ गया था। एक स्त्री सब कागज देख रही थी और उसको पहले से श्लोक सिखाया था हमने। वो पूछेंगे कि संस्कृत जानते हैं, तो कहना कि हाँ, तो कुछ श्लोक बोल सकते हैं। तो मैं कह दिया था कि बोलना, हिचकना मत, याद कर लो, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, और भी नमो महाबदान्या इत्यादि, पांच छह श्लोक रटाया गया। और सचमुच संजोग से वो स्त्री पूछ दी जो कागज देख रही थी कि आप क्यों जा रहे हैं अमेरिका पूजा करने के लिए। तो आप संस्कृत जानते हैं? हाँ नहीं, वो पूछे कि वेद जानते हैं, इसने कहा हाँ, वेद का श्लोक बोलिए। वो तो धड़ाधड़ बोला नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत, और दो श्लोक बोलते बोलते ही स्त्री ने कह दिया ठीक है ऑल द। इसके बाद वीसा दे दिया 5 साल का। ये वेद का वाक्य बोला बहुत जोरदार था, वाह वाह, ऐसे वेद याद कर लिया। तो बहुत गिरा हुआ युग है, लेकिन इसमें एक गुण अद्भुत है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये को महान गुण कीर्तन कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कृष्ण के केवल कीर्तन मात्र से व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम में जाता है, ये अद्भुत गुण है। तो कलयुग के सारे दोषों को एक पलड़े पर रखिए और इस एक गुण को एक तरफ, तो ये गरिष्ठ हो जाएगा, सारे अवगुण हल्के हो जाएंगे, इतना बड़ा गुण। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते अस्ति ही एको महान गुण, महान का अर्थ है उन सारे दोषों से बड़ा। कलिर कलिर दोष निधे राजन, ये दोष निधि है, जैसे समुद्र में जल ही जल भरा है, उसे कलयुग में केवल दोष ही दोष भरा है, लेकिन एक गुण ऐसा है कि सारे दोष इसके माफ कर दिए जाते, उनसे विचार नहीं किया जाता। तो सारग्राही वैष्णव जन भक्त जन देखते हैं कलयुग के इस गुण को, तो इसलिए कलयुग को पसंद करते हैं। कृतादिशु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। हम कलयुग में नारायण परायण हो जाएंगे, भगवान का नाम जप करके कीर्तन करके, वे सोचते हैं। तो इस पर प्रश्न मानो निमि महाराज ने किया होगा कि अच्छा ठीक है, काल तो आपने वर्णन किया कि काल कलयुग सबसे अच्छा है समय, और देश के बारे में भी कुछ कहेंगे कि स्थान सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेस्ट स्थान कौन है भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए। तो वो तो वृंदावन आदि है ही, इसके अतिरिक्त कह रहे हैं क्वचित क्वचिन महाराज द्रविणेश भूरिश ताम्रपर्णी नदी जत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबंति जलं तासा मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया भवन्ति इति शेष। क्वचित क्वचित महाराज द्रविणेषु च भूरिश, च शब्द बता रहा है मथुरा मंडल या ये ब्रह्मावर्त हरिद्वार इत्यादि, ये तो स्थान है ही, इसके साथ साथ है दक्षिण भारत के बारे में बता रहे हैं। द्रविणेषु च भूरिश, द्रविण देश जहां पर ताम्रपर्णी नदी है, कृतमाला नदी है, पयस्विनी नदी है और महापुण्या कावेरी नदी है, ये सब देश भगवान के भजन के लिए बहुत सुंदर, और इन नदियों के पानी में वह गुण है कि इनमें यदि मनुष्य स्नान करें या पिबंती जलम इनका जल पिए तो प्रायः भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो जाते हैं पानी पीने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रायः भक्ता भगवती वासुदेवे अमलाशया भवंती, इनका हृदय शुद्ध हो जाता है। यह प्रश्न होगा कि गंगा जी जमुना जी का नाम नहीं क्यों नहीं आया, तो च शब्द से इनको तो सभी जानते हैं, महाराज निमि जानते हैं, इसलिए इसको नहीं कहा गया। महाराज आप जो जानते हो तो है ही, लेकिन इसके साथ कावेरी और पयस्विनी कृतमाला ताम्रपर्णी ये सब नदियां हैं, इनके तटवर्ती प्रदेश जो है वन या भूमि, यहाँ पर यदि जन्म हो किसी व्यक्ति का तो बहुत चांस है कि वह व्यक्ति भगवान वासुदेव का भक्त होगा। कितना दुर्लभ जन्म हम लोगों को मिला हुआ है, सोचने की बात। और उसमें सबसे बेस्ट प्लेस पर हम लोग बैठे हुए हैं, जमुना के तट पर, गंगा के तट पर। देवता मनोरथ करते हैं कि हमारा जन्म भारत वर्ष में हो, गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे, और हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करके बैकुंठ जाएं। कब तक स्वर्ग में मैनेजमेंट देखते रहेंगे, वो ये सोचते हैं देवता लोग। वे बैकुंठ जाना चाहते हैं, लेकिन बैकुंठ जाने के लिए भारत वर्ष ही एयरपोर्ट है, यहीं से जाएंगे, और जगह कोई स्थान नहीं। जैसे कहीं से व्यक्ति चले लेकिन उसको जाना पड़ता है एयरपोर्ट पर, वहां से विमान खुलते हैं, तो यह ऐसी भूमि है, यहां से बैकुंठ जाते हैं। ये भूमि इतनी पावन, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। क्यों भगवान ऐसा करेगी, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, और लोग जन्म सार्थक नहीं कर सकते हैं? नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहने का आशय है कि हे भारतवासियों, तुम लोग करो और तुम लोग सिखाओ जाकर दुनिया में सबको, परोपकार करो। ये भारतवासियों पर भार चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम लोगों को प्रचार करना चाहिए। लेकिन पहले अपना जन्म सार्थक करें, भगवान की भक्ति खूब करें और प्रचार करें, आचार और प्रचार। जगह जगह शास्त्रों में शब्द दिए गए हैं, उसमें बहुत बड़ा वजन है, बहुत गंभीरता है। गंगा जी के किनारे जन्म लेना या रहना, या जमुना जी के किनारे, या नारायण सरोवर आदि, द्वारका, बद्रीनाथ इत्यादि, ये तो बहुत पुण्यमय जगह है, बहुत भाग्य है। और पूरा भारत वर्ष, दक्षिण भारत ये कह रहे हैं, कावेरी, पयस्विनी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, ये पिबंती जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर, हे मनुष्येश्वर, हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ निमि महाराज, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं, कौन कौन नदी, कावेरी, प्रतीची और महानदी। ये महानदी मुख्य रूप से उड़ीसा में बहती है, इन नदियों का जो जल पीते हैं, प्रायः अमलाशय हो जाते हैं और भगवान वासुदेव में भक्ति करते हैं। आज प्रश्न उठ सकता है कि ये नदियां हैं और इनका जल भी लोग पीते हैं, तो भक्ति नहीं देखी जाती है। लेकिन वास्तव में यदि विचार करके देखिए, तो भारतवर्ष में जन्म लेने वाले लोगों के मन में जो भगवान कृष्ण या विष्णु या श्री राम के प्रति जो एक अटैचमेंट है, वो एक अद्भुत है। भले वे रेगुलर जप न करते हों, रेगुलर भागवत न पढ़ते हों, लेकिन भगवान के प्रति एक बहुत स्नेह की डोरी बंधी होती है। अब ऐसे वृंदावन को लेकर देखिए, यहाँ हजारों मंदिर है, मंदिरों में भीड़ जमी हुई है, हम लोगों के मंदिर में ही हजारों लोग रोज आते हैं। हो सकता है कि वे जप न करते हों, अब वे रेगुलर भागवत भी न पढ़ते हों, लेकिन भगवान को देखने के लिए दौड़े हुए आते हैं। आरती बीत रही है, पट बंद हो जाएगा, दौड़ते हैं बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए, या रंगनाथ जी का, या राधा बल्लभ जी का, जहां भी दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। भक्ति इसी को कहते हैं, वास्तव में भगवान के साथ एक संबंध है। इस देश में जन्म लेने का यह लाभ है, एक लालसा है, चले कृष्ण को देखें, कृष्ण को देखें, कृष्ण को देखें, आरती आकर देखते हैं, देते भी हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। हमने देखा है, गरीब से गरीब आदमी आता है तो भेंट पात्र में कुछ देता है, देता है। यही भक्ति है, जो संबंध है हृदय में भगवान के प्रति, यह भक्ति है। तो यह प्रमाण है कि नदियों के तट पर जन्म लेने वाले लोग वास्तव में भगवान वासुदेव में जुड़े रहते हैं। ऐसा दृश्य कहीं नहीं है जगत में, जहां इतने लोग भगवान को देखने के लिए बेचैन हो और दौड़े। भगवान का पट खुलता है तो दौड़ते हैं लोग देखने के लिए, धक्का पर धक्का होता है। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को एक बार देख रहे थे तो एक स्त्री आई उड़ीसा की, और उसका शरीर छोटा था और बड़े बड़े पुरुष आगे दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी को, तो उसको दिखाई नहीं पड़ रहे थे जगन्नाथ जी, तो वह गरुण स्तंभ पकड़ करके ऊपर चढ़ी देखने के लिए जगन्नाथ जी का मुख, तो चैतन्य महाप्रभु के कंधे पर पैर दे करके और गरुण स्तंभ पकड़ कर उसे दर्शन कर रहे। और चैतन्य महाप्रभु स्त्री शब्द का भी उच्चारण नहीं करते थे, इतना उनका नियम था, प्रकृति कहते थे, स्त्री शब्द नहीं कहते थे। और ऐसे महासन्यासी के कंधे पर स्त्री पैर दे करके जगन्नाथ जी को देख रहे थे, उसको ध्यान ही नहीं था कि मैं सन्यासी के या किसी लकड़ी के ऊपर पैर रखी हूं, उसको कुछ भी ध्यान नहीं था, इतना विभोर थी जगन्नाथ जी का मुख निहारने में कि ध्यान नहीं था। और जब गोविंद सेवक जो चैतन्य महाप्रभु के थे वे देखे तो वे तो लगे उत्तर हुआ, अब क्या करो, उतरो उतरो उतरो, लेकिन वो काहे को सुनने जाए, जब पट बंद हुआ तब होश हुआ कि अरे मैं सन्यासी के ऊपर पैर दी हूँ, तो इसके बाद उतरी। और जब उतरी तो चैतन्य महाप्रभु रोने लगे कि जगन्नाथ जी हमको ऐसा प्रेम नहीं दिए जितना इसको प्रेम दिए। बहुत भगवान विलाप कर रहे थे कि हमारे भीतर ये प्रेम नहीं है जितना इसको प्रेम। वह लेडी कोई डिवोटी नहीं थी, ऐसे रेगुलर जैसे लोग अपने को समझते हैं तो हम डिवोटी हैं, लेकिन वो तो इस तरह की नहीं थी। लेकिन देखिए जगन्नाथ जी से उसका अनुराग, भगवान भी तरस गए कि हमारे भीतर ऐसा प्रेम नहीं है। और जब वो उतार रहे थे गोविंद, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु मना किए थे गोविंद को, चुप चुप छोड़ लो, छोड़ लो, दर्शन कर लो, तुम भी देखो जगन्नाथ जी को, ये सब उतारो मत। तो इस तरह से लोग यहाँ होते हैं, भगवान से संबंध होता है, प्रेम होता है, उनके उस प्रेम का आकलन इन नियमों के पालन से नहीं किया जा सकता है। बहुत बातें हम लोगों को समझने की है, मन ही मन हम लोग ये सोच सकते हैं हम तो ये करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी में या कृष्ण में कितना अनुराग है वो तो कोई मीटर होता हृदय को नापने वाला तो पता चल जाता, कितना हम कृष्ण को अपना मानते हैं, कितना उनमें अनुराग। यह देश ऐसा है जहाँ के रज में, जहाँ की भूमि में भगवान के प्रति अनुराग, जन्म लेने वालों में वो संस्कार रहता ही है, ये स्वाभाविक। इसीलिए तो करभाजन जी देश का नाम ले रहे हैं, तो कह रहे हैं जहां ताम्रपर्णी नदी बहती है और जहां पर कृतमाला बहती है, पयस्विनी बहती है, कावेरी बहती है, महापुण्या प्रतीची बहती है, महानदी बहती है, इन नदियों के जल को जो लोग पीते हैं प्रायः भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं। तब एक पुनः प्रश्न उठा, स्वयं ही करभाजन जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है तो वह विधि निषेध से अतीत हो जाता है, करने लायक काम कुछ होते हैं उसे जरूरत नहीं पड़ती है कि करे, और जो कर्म निषिद्ध है उससे तो बच ही जाता है। तो ये कहते हैं कि भक्ति ही करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि इन नदियों के तट पर जो जन्म लेते हैं वे भगवान वासुदेव के भक्त होते हैं, उनका हृदय निर्मल हो जाता है। तो ऐसा लगा जैसे करभाजन जी केवल भक्ति को ही सब कुछ मान रहे हैं। तो मानो महाराज निमि ने पूछा कि केवल भक्ति ही करने को कहते हैं और जो विहित कर्म है करने के लिए वेदों में शास्त्रों में और निषिद्ध कर्म उससे बचना चाहिए, तो कहते हैं भक्त अपने आप कृतकृत होता है, बच जाता है। देवर्षि भूतात् नृणां पितृणां नाखिं करो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम्। देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, जीवों के प्रति, संबंधियों के प्रति और पितरों के प्रति मनुष्य का जो भी कर्तव्य है